वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कान झांसी में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। भाग्य से जीव को कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब भक्तों के संग में भगवान के चरणों में तुलसी महारानी के दर्शन करते हुए श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप हम सबका सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से प्रतिदिन भागवत के श्रवण का, इसको निर्गुण प्रायण कहते हैं, 7 दिन के प्रायण के प्राय रजोगुण का प्रायण कहते हैं। मासिक प्रायण हो पक्षिक प्रायण हो भागवत का तो उसको सात्विक कहते हैं, और कभी करे कभी नहीं पढ़े कभी छोड़े कभी करे उसको तामसिक कहते हैं, और जो प्रतिदिन करे लेकिन कोई उसमें इच्छा न हो कोई स्वार्थ न हो केवल भक्त भक्ति की वृद्धि और भक्त संघ की प्राप्ति के लिए भगवत तत्व की जिज्ञासा के लिए श्रवण करता रहे उसको निर्गुण प्रायण कहते, वो प्रायण अति उत्तम प्रायण माना गया है। तो हम दसम स्कंद श्रीमद् भागवत जो आश्रय विषय है, भगवान जिसका शरण लेना चाहिए जिसका आश्रय लेना चाहिए, उसके अंतर्गत 12वें अध्याय में अघासुर वध की लीला का श्रवण वर्णन कर रहे हैं। तो आइए आज श्लोक संख्या 38 उसका पाठ करेंगे। नैतद् विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेदसः अघोपि यद् स्पृशं धौतपातकः प्राप्तं साम्यं त्वसतां सुदुर्लभम् नैतद् विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेदसः अघोऽपि यत् स्पृशन्धात् पातकः प्राप्तां सामयं त्वसतां दुर्लभम् नैतद् विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेदसः अघोऽपि यद् स्पृशन्धोत पाकः धोत पातकः परात्तं परात्मसाम्यं तव सतां सौदुर्लभम् पाठ कीजिए।
नैतद् विचित्रं मनुजार्हमायिनः परावराणां परमस्य वेदसः
राणां परमस्य वेदसः अघोऽपि स्पर्शनधोतपातकः
प्रापात्मसाम्यं स्वसतां सुदुर्लभम्
नैचद्विचित्रं मनुजार्भमायिनां
परावराणां
परमस्य वेदसः अधोऽपि यस्पृशन्धोत पातकः प्राप्तं समयं त्वसतां सुदुर्लभम् नैतद्विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेदसः अघोऽपि यस्पृशन्धोत पातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां दुर्लभम् नैतद्विचित्रं मनुजार्भयेन परावराणां परमस्य वेदसः अघोऽपि यस्य स्पृशन्धोत पातकः प्राप्तस्यमयं सतां दुर्लभम्।
अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं न एतद् विचित्रम, ये कोई विचित्र बात नहीं है। क्या विचित्र बात नहीं है कि अघासुर अघोपी अघासुर जैसा भी भगवान के स्पर्श मात्र से सब पापों से मुक्त हो गया। अघोपी यस स्पर्श, जिसके स्पर्श करने से धौत पातक सारे पापों से दूषित चेतना से मुक्त हो गया, प्राप्य आत्म सम भगवान के समान सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया। असताम दुर्लभम, जो भक्त नहीं है, जिसका चेतना दूषित है, उनके लिए अति दुर्लभ है। कोई विचित्र बात नहीं है, भगवान का ये स्वभाव है। तो एक मनुज्य अर्भ मायन, इसका अर्थ लिखा है भगवान श्री कृष्ण के लिए, जो नंद तथा यशोदा पर दयालु होने के कारण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। तो मनुज अर्भ, अर्भ का मतलब बालक, मायनम मतलब प्रेम के कारण, जैसे कहते हैं ये तो भाई प्रेममयी माता है। तो एक माया का अर्थ माया है, एक माया का अर्थ है अतिशय प्रेम और करुणा। तो भगवान करुणा करके प्रेम वश नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में मानुजम अर्भ माइना, ये भगवान का जो असली रूप है वो द्विभुज रूप है। उसी रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, अपने करुणा के कारण, अपने प्रेम के कारण, अपने स्वभाव के कृष्ण कृपा करके, कृष्ण के लिए जो नंद तथा यशोदा पर दयालु होने के कारण, माइनम का मतलब दयालु, कृपालु, प्रेम के कारण, उनके लिए कोई विचित्र बात नहीं है। क्यों? परमस्य वेदस्य पर अवर, इसका लिखा है जो अर्थ यहां लिखा है, समस्त कार्यों तथा कारणों का, कार्य तथा कारण, समस्त कार्य और उनका कारण, पर अवर, कार्य और कारण दोनों का क्या है? परम वेदस्य, परम दृष्टा है, परम सृष्टा है, मतलब सारी सृष्टि को करने वाला हुआ। इसका भाव ये है कि अगासुर को पैदा किसने किया? भगवान ने किया। तो जो अपना है भगवान का, तो कोई पराया है नहीं, उसके लिए उसको मुक्त करने में कौन सी परेशानी है? तो इसलिए भगवान के स्पर्श से अगासुर स्वरूप या मुक्ति प्राप्त कर जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक और तुलना ऐसी दिख रही है इसमें कि अभक्तों के लिए ये दुर्लभ है, लेकिन फिर भी भगवान सबके सृष्टा है, इसलिए सबको अपना मानते हैं, इसलिए उनको दे दिया। ये तो अघासुर हो गया, लेकिन इसके ऊपर जो है मनुज अर्भ माई नाम, ये नंद और यशोदा के प्रति जो उनका स्नेह है, उससे तुलना नहीं की जा सकती। जब अघासुर को सारूप्य मुक्ति दी तो उनको क्या देगा? अघासुर को एक बार स्पर्श हुआ और उनकी गोद में 10 साल खेले, तो उनके ऊपर अति दयालु भगवान थे। सबके ऊपर दयालु है। प्रभुपाद जी कभी उदाहरण देते थे, कोई आदमी बहुत बड़ा दानी हो तो ठीक है, सबको दान देता है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति तो उसका दूसरा ही भाव होगा ना। अपने घर में अपने बच्चों के साथ तो व्यवहार ऐसा तो नहीं हुआ जैसे किसी दानी को दिए। तो अघासुर को तो भगवान ने जैसे दान दे दिया, और लेकिन नंद और यशोदा तो वो अपने घर के थे, अपने ही प्रेम थे, तो उनके साथ उनके व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर था। तो अब इन दोनों में से हमको कौन सा पक्ष लेना चाहिए? अघासुर वाला लेना चाहिए कि नंद और यशोदा वाला लेना चाहिए? तो उसके लिए सेवा करनी पड़ी, आगे और अघासुर वाले के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि वैकुंठ के जाने में के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, भगवान को गालियां देंगे तो भी चले जाएंगे, लेकिन इस धरती के ऊपर भक्त बन के रहने के लिए नंद और यशोदा की तरह आंसू बहाने पड़ेंगे। अब कौन सा रास्ता लेना है ये आप सोच लो। पांडवों की तरह 12 साल वन में बहुत घूमना पड़ेगा तब भगवान सारथी बनेगा, नहीं तो पूतना की तरह मारने के लिए जाओ तो भी मुक्ति मिल जाएगी। तो चाहिए क्या, सेवा चाहिए कि मुक्ति चाहिए? ये बहुत बड़ा विशेषता है कि चाहिए सेवा। मुक्ति तो पूतना और अघासुर को भी मिल गई, लेकिन भक्ति नहीं है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान को आनंद भी मिला इनके खेलने में, इनको युद्ध करने में भगवान को बड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन उनका भाव भगवान के प्रति अनुकूल नहीं था। तो अनुकूल भाव नहीं था इसलिए भक्ति नहीं है। मुक्ति तो मिली लेकिन भक्ति नहीं मिली। तो आइए पहले श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादर आदर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो एक तो भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण है। भौतिक जगत उच्च तथा निम्न जगत के कार्य कारण आदि नियंता भगवान द्वारा ही सृजित होते हैं। अभी क्या लिखा, उच्चतः भौतिक जगत, भौतिक जगत का मतलब ये 14 भवन जिसमें तीन को विभाजित किया, ऊपर के नीचे के मध्य के लोक। तो उच्च तथा निम्न जगत, इसका मतलब स्वर्ग आदि लोग और पाताल आदि लोग के कार्य कारण। कार्य कारण का अर्थ ये होता है असल में, कारण भी वो है कार्य भी वो है, सृष्टि करने वाला के भी वो है और जो सामान जिससे सृष्टि होती है वो भी उसी से प्राप्त होता है। वैसे किसी चीज के दो कारण जन्म कहे गए, सामान्य रूप से किसी चीज के दो कारण होते हैं। जैसे ये स्टूल है तो प्लास्टिक इसका उपादान कारण है जिससे ये बना है, लेकिन मशीन के अंदर किसी कारीगर ने इसको स्टूल का रूप दिया तो वो इसका निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण एक होता है, उपादान कारण दूसरा है, इसका दो कारण है। ऐसे सृष्टि का उपादान कारण तो भगवान है, निमित्त कारण प्रायः ब्रह्मा जी को माना जाता है, क्योंकि आकृतियां प्रकृतियां तो वो बनाता है ना, स्टूल तो वो बनाता है, टेबल वो बनाता है, मानव वो बनाता है, पशु वो बनाता है, लेकिन सारा जिस चीज से बनता, भाई लकड़ी से स्टूल बना तो लकड़ी तो भगवान ने दी, लेकिन उससे टेबल कुर्सियां ब्रह्मा जी ने बनाई। ले तो इसलिए प्रभुपाद ने यहां उसी बात को लिखा, आदि नियंता, इनके नियंता मतलब ब्रह्मा आदि भी जो जगत को सृष्टि करने में कार्य करते हैं, नियंता भगवान द्वारा ही सृजित होते हैं। तो भाई ब्रह्मा जी ने को किसने पैदा किया, भगवान के नाभि कमल से, नाभि से निकले हुए कमल के डंडे के। तो जो निमित्त कारण है वो भी भगवान से उत्पन्न होते हैं, और जो मूल जो उपादान कारण है वो भी भगवान से ही प्रकट होता है। तो दोनों के आदि कारण भगवान है, इसलिए भगवान को कहते हैं कार्य कारण। जब कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी अहितु की कृपा से ऐसा किया। ये प्रसंग इससे आगे वाले अध्याय में आया है, 9वें अध्याय में। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है सुखदेव गोस्वामी ने, श्रीकृष्ण यशोदा ने, नंद ने क्या ऐसा पुण्य कार्य किया कि ये परम ब्रह्म भगवान उनकी गोद में खेल रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नंद एक वसु धरा और द्रोण नाम के थे जिन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत बड़ी प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी की कृपा से वो नंद और यशोदा बने, इसलिए उनको ये सौभाग्य प्राप्त किया हुआ। लेकिन परीक्षित को संतुष्टि नहीं हुई इस बात से। ये लीला के ये प्रश्न कब पूछा गया है, जब भगवान ने मट्टी खाई, जैसे जमुना के किनारे मट्टी खाई तब ये प्रश्न पूछा। और इस लीला के बाद धारावाहिक दामोदर लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो सौभाग्य ब्रह्मा जी को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, लक्ष्मी को नहीं मिला, जो भगवान के अंग से सदा सटे हुए हैं, वो सौभाग्य इस गोपी को मिला, यशोदा को मिला। भगवान को कान से पकड़ के बांध रही है, ब्रह्मा जी ऐसा कर सकता है क्या? शंकर ऐसा स्वयं को नहीं मिला है तो उनकी कृपा से दूसरे को कैसे मिलेगा? इसका तात्पर्य यह है कि नंद और यशोदा तो भगवान के नित्य वात्सल्य प्रेम की मूर्तिमान रूप है, जो नित्य गोलोक में निवास करते हैं, और ब्रह्मा जी की कृपा से धरा और द्रोण नाम के वसु इनके अंदर प्रवेश करके भगवान के वात्सल्य रस का रसास्वादन किया। ये रहस्य है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। द्रोण और धरा इन दोनों ने ब्रह्मा जी की कृपा से नंद और यशोदा के अंदर प्रवेश करके ये वात्सल्य रस का रसास्वादन किया। जब ब्रह्मा जी स्वयं को जो सौभाग्य नहीं है, वो उसकी कृपा से दूसरे को कैसे मिलेगा? तो इसलिए यहां जो लिखा है कि नंद और यशोदा के घर में भगवान अपनी अहित की कृपा से माई नाम का मतलब करुणा के कारण, प्रेम स्नेह के कारण। वैसे भगवान को लिखा है कि जब यशोदा मंथन कर रही थी दही का, तो भगवान उठ के किसके ऊपर आए? चढ़ के बोले प्रेम आरोह्य, प्रेम के घोड़े के ऊपर चढ़ के आए। वो प्रेम उनको खींच के लेके आता है। तो यहां लिखा है कि ये भगवान का इनके यहां प्रकट होना, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का नंद नंदन यशोदा नंदन के रूप में प्रकट होना गोलोक वृंदावन में, ब्रज में, गोकुल में, ये तो भगवान की अहितुकी कृपा है। अब आगे पढ़ते हैं। अतः उनके लिए अपने असीम ऐश्वर्य का प्रदर्शन कोई विचित्र बात न थी। वो अपने असीम ऐश्वर्य का प्रदर्शन करें, ऐश्वर्य का प्रदर्शन कैसा करें? गोवर्धन को उठाए, हाँ, 7 साल का बच्चा पर्वत को उठा ले, 6 दिन का बच्चा पूतना जैसी राक्षसी को होंठों से मार दे भगवान, ब्रज के अंदर किसी असुर को अस्त्र शस्त्र से तो मारा ही नहीं, तो ये तो उनका अद्भुत ऐश्वर्य है, तो इसका प्रदर्शन हो अथवा किसी को मुक्ति दे दे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक चैतन्य चरितमृत में प्रसंग आता है, वासुदेव चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दत्त कि लोग संसार के अंदर इतना पाप कर रहे हैं कि सब नरक में जाएंगे, बड़ा दुख भोगेंगे, मेरे से ये देखा नहीं जाता है। आप भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करो कि इन सब का दुख ताप संताप पाप उसका फल मेरे को दे, मैं नरक में निरंतर रह जाऊंगा, इन सब को मुक्त कर दे। तो महाप्रभु ने कहा तुम्हें साक्षात प्रहलाद, तुम तो प्रहलाद हो, ऐसा प्रहलाद ने कहा था, मैं अकेला नहीं जाऊंगा भगवान आपके धाम में जब तक इन असुर के सारे असुरों को नहीं ले जाऊं, तुम साक्षात प्रहलाद हो, ये तुम्हारे लिए विचित्र नहीं है। वहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि लोग कहते हैं हजरत ईसा सबका पाप ले लेता है, लेकिन जो उसके शरण में जाता है उसका लेता है, लेकिन महाप्रभु एक एक पार्षद सबका पाप अपने आप लेने को तैयार है, शरण में आए या ना आए। और इस अघासुर के और पूतना के प्रसंग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं हजरत ईसा यशु मसीह तो केवल पाप लेता है, लेकिन भगवान तो उसको अपना धाम दे देता है, इससे ज्यादा और कौन दयालु हो सकता है। तो एक एक पार्षद महाप्रभु का पूरे जगत को पवित्र करके उद्धार करने का की योग्यता रखता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण असमर्थ नहीं, कृष्ण असमर्थ नहीं है कि तुम्हारे को नरक में भेजेगा तब सबका उद्धार करेगा। और फिर महाप्रभु कहते हैं तुम संकल्प करो कि सब भक्त बन जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब भक्त बन जाएंगे और सबका उद्धार हो जाएगा।
कृष्ण और कृत्य नहीं, भक्त वांछा पूरी करे। कृष्ण का और कोई काम नहीं है, केवल भक्तों की इच्छा पूरी करते। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक पूरे लोक को ही भगवान मुक्त कर दे तो भगवान को कौन सा घाटा पड़ता है। एक सरसों की बोरी में से एक सरसों का बीज गिर जाए तो कोई ढूंढता है क्या? रसोई में कोई एक सरसों का बीज गिरता है ढूंढते हैं आप? नहीं। तो भगवान की मुट्ठी में ये अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड सरसों के बीज के बराबर है। एक पूरा लोक ही किसी के कहने पे मुक्त करे, क्या फर्क पड़ता है? तो भगवान तो इतने उदार हैं कि किसी को, एक एक व्यक्ति को क्यों, पूरे लोक को मुक्त भी कर दे भक्त के कहने के ऊपर, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की भगवत्ता है। तो कहते ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, उन्होंने ऐसे महती कृपा प्रदर्शित की कि सर्व अधिक पापी दुष्ट अघासुर भी ऊपर उठ गया और उनकी संगत संगियों में से एक बन गया और उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, जो वस्तुतः भौतिक कलुषों से युक्त पुरुषों के लिए प्राप्त कर पाना असंभव है। तो भगवान ने तो बहुत बड़े महान पापी अघासुर का उद्धार करके और अपने पार्षद का स्थान दे दिया, अपने जैसा रूप दे दिया और वैकुंठ धाम दे दिया। ये भगवान ने अपने, ये भगवान का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है। और वो कोई भी उसके संपर्क में, जैसे 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 आग का स्वभाव है, कोई उसके नजदीक जाएगा सर्दी में तो अपने आप गर्मी सर्दी चली जाएगी। कल्प वृक्ष का स्वभाव है, जो उसके नीचे बैठेगा जो मांगेगा मिल जाएगा। गर्मी लगती है जाके पेड़ के नीचे बैठोगा, पेड़ का स्वभाव है छाया देगा। ऐसे भगवान के निकट जाएंगे, उनका स्वभाव है आनंद देगा, मुक्ति देगा। ये उनका स्वभाव है, ये उनका स्वरूप है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां मिलता ही है। एक आदमी कोई विदेश से आया, बेचारा मन तो मंत्री गया था लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, वापस आके बोला वहां तो छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं। तो इनमें आश्चर्य क्या है, वो उनकी भाषा ही है। भाई उधर छोटे बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, कोई कहे भाई दो साल का बच्चा भी अंग्रेजी बोल रहा था, तो इसमें क्या है, उनकी मातृभाषा ये है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो ये भगवान के लिए किसी को मुक्ति देना, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो उनका स्वभाव ही है। उनका नाम ही मुकुंद है, उसके पास गया उसका उद्धार हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात कही जा रही प्रेम के प्रसंग में माया शब्द, प्रेम के प्रसंग में माया शब्द भी वहवहित किया जाता है। जहां अति प्रेम होता है ना, कहता है ये बड़ी मां को देखो कितनी ममता माया है अपने बच्चों में, तो माया शब्द कभी प्रेम का वाचक भी होता है। माया सदा के लिए मोह का वाचक नहीं है, प्रेम का वाचक भी है। अति मायामयी है माता, बड़ी मायामयी है, बड़ी प्रेममयी है, उसका अर्थ ये। तो माया का एक अर्थ संस्कृत में प्रेम है। माया वश ही पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, ये माया की परिभाषा है प्रेम में। अतः मायिनः शब्द सूचित करता है कि कृष्ण प्रेम वश नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए और मानवी शिशु मनुज अर्भ का रूप धारण कर लिया। बच्चे बच्चे मानव का धूप रूप धारण किया, लेकिन भगवत्ता उनकी छुपी नहीं थी। वो कार्य ऐसे कर रहे थे जो कोई बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम के कारण उन्होंने नंद और यशोदा के घर में शिशु रूप में मानव जैसे बालक के रूप में प्रकट्य अपना संभव किया। वे कार्यकारण के सृष्टा हैं, कार्यकारण के सृष्टा हैं, ब्रह्मा जी आदि के भी सृष्टि करने वाले हैं। जगत के सारे तत्व महत्त्व उनके उदर से निकलते हैं, उनके पेट के से अंदर से सारे 14 ही लोक निकले ना, तो सारी सृष्टि के कारण वो हैं, कार्य कारण वही है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान के लिए कुछ अपने प्रभुपाद जो कहता था असंभव शब्द तो मूर्ख के कोश में होता है, भगवान के लिए कुछ संभव नहीं है और भगवान का भक्त भी असंभव को संभव बना देता है। बहुत बड़ा अद्भुत कार्य भक्त कर लेते हैं। अतः अघासुर जैसे जीव को भी उन्होंने सारूप्य मुक्ति प्रदान की, कृष्ण के ये लिए तनिक भी विचित्र नहीं है। कृष्ण को अपने संगियों के साथ साथ अघासुर के मुंह में प्रवेश करने में आनंद आया। अब यहां अघासुर को भगवान ने मुक्ति क्यों दी, कोई कहे आखिर क्यों दी, तो उसका एक कारण यह है कि भगवान के प्यारे जो संगी साथी सखा थे उनके मन में आया कि खेलने के लिए बड़ा अच्छा हमारे को ये एक कंदरा दिखाई दे रही है, ये अच्छा सा एक गुफा है, चलो खेलते हैं। तो भगवान के प्रिय सखाओं को थोड़ी देर के जहां खेलने का अवसर मिला और जिसने खेलने का सौभाग्य दिया उसको भगवान ने मुक्ति दे दी। इसका मतलब भगवान के भक्तों की थोड़ी सेवा करने से ये प्राप्ति हुई। इससे ये सूचित हो रहा है क्योंकि भगवान ने भक्तों ने उसमें रमन खेलने का विचार किया, उनको उसमें आनंद मिलेगा, तो भगवान ने कहा जो मेरे भक्तों को आनंद देता है उसको तो मैं मुक्त करूं ही। ऐसे गजेंद्र मोक्ष में आता है कि मगरमच्छ ने तो पकड़ लिया था मगर ने गज को, और गज ने जब गोविंद को पुकारा तो गोविंद गरुड़ के ऊपर आया तो पहले मगरमच्छ का गर्दन काटा सुदर्शन चक्र से, और तब पहले मगरमच्छ का गर्दन काटा तो गजेंद्र का भगवान बुलाया मैंने, प्रार्थना मैंने की और आपने, और देखा उसने हाथी ने देखा कि मगरमच्छ के शरीर से दिव्य गंधर्व जो है निकल के और आकाश मार्ग में जा रहा था, बोला बुलाया मैंने और पहले उधार इसका कर लिया, बोला जब मेरे भक्त का पांव भी पकड़ लेता है तो पैसे पहले उसका उधार करता हूं फिर भक्त का करता हूं, तो मेरे भक्त को जिसने पांव पकड़ लिया तो उधार का अधिकारी हो ही गया। तो यहां भगवान ने अघासुर का उधार किया, उसमें भक्तों को भगवान के सखाओं को आनंद दिया, ये उद्देश्य दिख रहा है। भगवान को आनंद दिया लेकिन भगवान को आनंद देने के लिए आया नहीं था, आया मारने था। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने कहा मुक्ति तो दे दी लेकिन भक्ति नहीं दी, क्योंकि वो अनुकूल नहीं था, उसका भाव अनुकूल नहीं था। अब यहां दोनों की तुलना की, अब मैं थोड़ा इसके ऊपर एक प्रवचन सुन रहा था अभी, एक हमारे प्रिय मित्र अच्छे भक्त हैं, कह रहे थे देखने में आकार तो अघासुर का बहुत बड़ा था लेकिन मानसिकता बहुत संकीर्ण थी। आया क्यों था मारने के लिए, मेरी बहन पूतना को मारा है, मेरे भाई बकासुर को मारा है, मैं इसको मारूंगा। तो संकीर्ण केवल अपने शरीर के संबंध के प्रतिशोध लेने के लिए आया था और अपने स्वामी कंस को प्रसन्न करने के लिए आया था, तो उसकी मानसिकता बहुत संकीर्ण थी। और भक्ति विनोद ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जितने भी असुर कृष्ण लीला में हैं उनको कोई दोष से तुलना दी है, तो अघासुर को कहा है क्रोध और ईर्ष्या की मूर्ति, ईर्ष्या के कारण आया था, क्रोध के कारण आया था, तो संकीर्ण चेतना लेकर आया था मैं इनको मारूंगा, इन्होंने मेरी बहन भाई को मारा है, बस ये बच्चे तो आ ही गए लेकिन बस अंदर आए तो इसको मार लूंगा। तो ये जो संकीर्ण भावना है ये दुष्ट भावना है, ये है स्वार्थ की भावना है। और दूसरे तरफ भगवान और भगवान के भक्त वो बड़े उदार चित हैं, वो सबका भला करना चाहते हैं। तो यहां हमारे को देखना ये है कि भक्त बनने के बाद भी हमारे अंदर क्या ईर्ष्या है, क्या क्रोध है, क्या दूसरे भक्त की प्रीति, तो फिर इसका मतलब तुम्हारी चेतना में भक्ति अभी नहीं आगे बढ़ रही है, क्योंकि संकीर्णता है, बहुत बड़ी संकीर्णता है, उदारता नहीं है। उदार चित्त भक्ति में उदार चित्त होना है। इसलिए निर्मत्सराणाम सताम, जो मत्सर रहित हैं, जिनमें ईर्ष्या नहीं है, वही भगवान की इस भक्ति का रसास्वादन कर सकते हैं और दूसरों के उद्धार का भी कार्य कर सकते हैं। सर्वभूत हिते रता, भक्ति का जहां सूत्र बताया गया है भगवत गीता में, मत कर्म मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, शरीर से काम मेरे लिए करो, मन से मुझे पाने की इच्छा रखो और हृदय से मुझसे प्रेम करो और फिर किसी से वैर मत करो, किसी से भी वैर, निर्वैर सर्वभूतेषु। ये बहुत बड़ा शिक्षा है। भक्ति का मतलब है ईर्ष्या रहित होना, किसी के प्रति जलन न हो, उदार भाव हो। सारे संसार के अंदर धर्म के नाम में भी लोग संकीर्ण दृष्टि के होते, मेरा धर्म है, ये विधर्मी है, इसको मैं मारूंगा। ये जो धर्म के नाम में आतंक हो रहा है, ये धर्म के नाम में आतंक भी अघासुर वाली संकीर्ण दृष्टि है, उदारता नहीं है। जबकि भागवत के एक एक पृष्ठ पे लिखा है, मानव तो मानव है, कीट पतंग को मारना भी नरक में जाने के लिए पड़ता है। तो जब आदमी मानव को कैसे, अब अघासुर सब बालकों को मार रहा था, उन बालकों ने बिगाड़ा क्या था अघासुर का? तो ये जो अब दुर्योधन है, असुरी प्रवृत्ति दुर्योधन की है, कह रहा है अपने गुरु को, ये सब मेरे लिए जान देने को तैयार, ये मर जाएंगे मेरे लिए, तुम राज करोगे ये सब मर जाएंगे, भले सब मर जाए लेकिन मेरे को राज मिले। ये जो दृष्टि है भाई, दूसरे सब ना मरे कुछ भी करें लेकिन मेरे को कुछ प्राप्त हो, और दूसरी तरफ अर्जुन कहता है नहीं नहीं इनको मार के मैं राज करना नहीं चाहता हूं, तो कितनी बड़ी उदारता अर्जुन की दृष्टि में है और कितनी संकीर्ण विचार दुर्योधन की दृष्टि में, कितना बड़ा अंतर है। अघासुर कितना छोटा मानसिकता लेकर आया था और कितना उदार भगवान श्री कृष्ण है। तो कृष्ण भावना का मतलब है, जैसे कृष्ण का भाव है ऐसे हमारा भाव होना चाहिए। कृष्ण का भाव है पापी तापी है, अगर हमारे निकट आता है तो उसका उदार करना है, पाप नहीं देखना है, उसके अंदर दोष नहीं देखना है, उसमें कोई अच्छाई ढूंढना चाहिए और अच्छाई सब में मिल जाएगी। अघासुर में ये अच्छाई भगवान को मिल गई, अरे मेरे मित्रों को खेलने के लिए जगह दे दी, अभी नहीं दी, मरने के बाद और कई महीनों तक मेरे सारे भक्त जाके वहां खेलेंगे। तो जो एक अच्छाई अघासुर में नजर आ गई भगवान को, पूतना में एक अच्छाई नजर आई, मेरा दूध पिलाने के लिए आई है, विष को देखा ही नहीं। तो दोष को न देखकर गुण ग्रही बनना चाहिए, ये है कृष्ण भावना का भाव। प्रभुपाद जी अगर दोष देखते तो कोई एक भक्त बन सकता था? जो प्रभुपाद के पास पहले, श्रीला प्रभुपाद के पास पहले जो अमेरिका में भक्त आए, तो क्या वो दूध में धुले हुए सारे धोती पहने तिलक लगाए माला हाथ में लेके क्या पूजा करके आते थे? शराब की बोतल हाथ में होती थी, लड़की के गले में हाथ होता था, लेकिन प्रभुपाद ने उनके किसी बाहर के व्यवहार के पाप को नहीं देखा, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा सेवा का भाव था और भगवान के नाम के जपने में रुचि थी, उसी को देखा। थोड़े से उनके अंदर जो अच्छा गुण था उसी को देखा, उनके अंदर जो दुष्व्यवहार था उसको, जो दोष था उनको देखा ही नहीं। और उन्होंने उनके अच्छे व्यवहार को इतना उजागर किया, इतना उजागर किया कि उनके सारे दोष उसमें जल के खत्म हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं सबके अंदर कोई ना कोई गुण होता है, आप उसको छोटी सी चिंगारी जैसा है उसको इतना इतना हवा दो, इतना हवा दो कि उतना वो आग बन जाए कि उसके सारे दुर्गुण उसमें जल के भस्म हो जाए। तो गुण ग्राही बनना चाहिए, भगवान से ये सीखने को मिलता है यहाँ इस लीला से। ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, अघासुर की तरह हमारे उद्धार हो जाएगा, ऐसा ठीक नहीं है। हम कहें ये हमारे लिए, ये भगवान की लीला और भगवान की महिमा के लिए अच्छे हैं, लेकिन हमारे को पांडवों का पक्ष लेना चाहिए। कैसा भी संकट आए, वन में जाना पड़े, अज्ञातवास में जाना पड़े, विष खाना पड़े, अपमान हो, लेकिन हम तो कृष्ण के भक्ति को छोड़ने वाले नहीं है। पूरी भगवद गीता में ये एक सिद्धांत सीधा मिलता है, सक्रिय रहो तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अब यहां सिर्फ मुख्य बात, जैसे विश्वनाथ, जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अघासुर ईर्ष्या का और क्रोध का प्रतीक है, तो हमको देखना चाहिए कि हम भक्त बने हैं, हमारे अंदर अभी तक ईर्ष्या है कि हम दूसरे किसी को अंदर दोष ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं। हमको सबके अंदर गुण ढूंढने की आदत डालनी चाहिए, दोष ढूंढने की आदत नहीं डालनी चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी बॉम्बे की बात है, बैठे थे, कोई आदमी मिलने के लिए आया तो सिगरेट पीने वाला था, बाहर पी के और उसके ऊपर पांव दे के फिर अंदर चला गया प्रभुपाद से मिलने के लिए। बाहर जो देखा प्रभुपाद का बाहर सेवक बैठा, तो उसने देखा, वो जब मिल के चला गया तो सेवक ने जाके प्रभुपाद को कहा, ऐसे लोग आते हैं आपका टाइम खराब करते हैं, ये सिगरेट पी रहा था। श्री प्रभुपाद ने कहा, कितने लोग बॉम्बे में रहते हैं, कितने अपने मंदिर के आगे से रोज जाते हैं? बोला सैकड़ों। तो करोड़ों रहते हैं, सैकड़ों जाते हैं। बोला कितने मुझसे मिलने आते हैं? बोला दो तीन। बोला तुमको उसमें अच्छाई नजर नहीं आई कि एक साधु के दर्शन के कोई लिए आया, तुमको सिगरेट नजर आई लेकिन उसके अंदर अच्छाई नजर नहीं आई कि साधु के पास आया था? तुमको गुणग्राही होना चाहिए ना, तुम दोष दृष्टि क्यों रख। प्रभुपाद ने सिद्धांत बताया, मधुमक्खी की तरह कोड़े नीम के ऊपर, करेले के ऊपर जाओ तो भी उसके अंदर से मधु निकाल के लाओ, और इस फोड़ा फुंसी और कचरे के ऊपर बैठने वाली मक्खी मत बनो कि जहां दोष है वहां जाके बैठ जाओ, गुणग्राही बनो, जीवन में गुणग्राही बनो। भगवत कृष्ण भावना का मतलब गुण देखना, दोष नहीं देखना। ईर्ष्या ही तो है जो हमारे को इस संसार में लाई है, भगवान से ईर्ष्या करने का भाव। या असुर भगवान से ईर्ष्या कर रहा था, वो तो भगवान तो उसका भी उद्धार कर रहा था, लेकिन उसका सौभाग्य था कि ईर्ष्या भगवान से कर रहा था, तो भगवान ने उसका उद्धार कर लिया। हम तो भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं और उसका भगवान उद्धार नहीं करते, ये बहुत बड़ी समस्या। हम साधन तो बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपना अहंकार छोटा करने का प्रयास नहीं करते। ईर्ष्या निकाल के दूसरे का शुभ चिंतन करने का भाव। संसार के अंदर जितने भी झगड़े हो रहे हैं उनके पीछे मुख्य कारण ईर्ष्या है, और दूसरा कारण हमारा बहुत ज्यादा स्वार्थी होना है। हमारे स्वार्थी होने के कारण ही दूसरे लोग दुखी होते हैं। उदारता होनी चाहिए, बहुत बड़ी उदारता की आवश्यकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण को अपने संगियों के साथ साथ असुर के मुंह में प्रवेश करने में आनंद आया, अतः जब असुर को उनकी इस क्रीड़ा का सानिध्य जो आध्यात्मिक जगत में होता है प्राप्त हुआ, तो उसके सारे कल्मश धुल गए और कृष्ण की कृपा से उसे सायुज्य मुक्ति तथा विमुक्ति प्राप्त हुई। दो शब्द क्यों लिखे, सायुज्य मुक्ति तथा विमुक्ति प्राप्त हुई। कृष्ण के लिए यह कोई अनोखी बात न थी। यहां तात्पर्य समाप्त होता है। दो बातें क्यों लिखी है, मुक्ति एंड विमुक्ति, सारूप्य मुक्ति एंड विमुक्ति बाय ग्रेस ऑफ कृष्ण। मुक्ति और विमुक्ति,
विशेष मुक्ति, एक सामान्य मुक्ति, एक विशेष मुक्ति, उसको अपना लोक वैकुंठ दिया, गोलोक नहीं दिया, क्योंकि गोलोक में, वैकुंठ में सब दास रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, और गोलोक में भगवान के सखा हैं, भगवान के वात्सल्य और प्रेमी है, जो अपने प्रेम से भगवान को वश में कर लेते हैं। वैकुंठ में तो मुख्य भाव है ही शांत और दास, लेकिन गोलोक में 12 ही भाव हैं, जो 12 रस हैं वो सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण रस मूर्ति है, रस राज है, तो वहां तो सारे रस परिपूर्ण रूप से है। इसलिए इस श्लोक में भगवान के द्वारा अघासुर का उद्धार करना ये भगवान की महिमा है। ऐसे भगवान के भक्तों को भी असुरी प्रकृति के लोगों को भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य है, मुक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो कह रहे भक्त को मुक्ति में इतनी ज्यादा आसक्ति, इतनी ज्यादा आसक्ति क्या उसके लिए, मुक्ति लघु, मोक्ष लघु करता है, भक्ति का एक लक्षण है मोक्ष लघु करता है। उसका अर्थ है मुक्ति उसके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखती, लघु करता बहुत छोटी होती है उसके लिए, उसकी कोई बड़ी महानता नहीं होती है, मोक्ष लघु करता। और फिर भक्ति है शुद्ध दुर्लभा, बहुत दुर्लभ है, यहां लिखा दुर्लभ, इसको क्या मिला, दुर्लभ मिला, जो शुद्ध दुर्लभ है वो जिसको प्राप्त हुआ, जो ऐसे लोगों के लिए संभव ही नहीं है। तो वैकुंठ में जाना इतना ज्यादा आसान मुश्किल नहीं है, लेकिन इस संसार के अंदर अच्छा आदमी बन के रहना मुश्किल है। वैकुंठ में जाना इतना मुश्किल नहीं है, वो हम सुन रहे थे, वो कहते भगवत धाम जाना, वैकुंठ जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना बंबई के लोकल ट्रेन में चढ़ के जाना है, क्योंकि इतना भीड़ इधर उधर तो भीड़ है ही नहीं वैकुंठ वाले रास्ते में भीड़ नहीं है, उधर जाने के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। इधर इंसान अच्छा कैसे रहे कि पीछे लोगों के लिए उदाहरण बने, अघासुर उदाहरण नहीं है हमारे लिए कि हम अघासुर जैसे बनेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, यहां तो भक्त बन के कैसे रहे कि दूसरों के लिए उदाहरण रहे। अब समस्या यह है कि हम, आप अकेले आते हो भक्ति में, परिवार नहीं आता है, अब यहां से आप वापस जाओगे तो फिर वापस आधा झगड़ा शुरू हो जाएगा, अब कहां चले गए थे, क्यों गए थे। तो ये जो उदाहरण ऐसा हमको जीवन में होना चाहिए कि पहले तो परिवार के ऊपर प्रभाव पड़े, फिर पड़ोस के ऊपर प्रभाव पड़े, फिर नगर के ऊपर प्रभाव पड़े, उन लोगों को भगवान की ओर आकर्षित कर सके, ये मुख्य कार्य है। वैकुंठ जाना इतना आसान मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल, किसी ने कहा कि नरक जाने के लिए बहुत बड़े परिश्रम करना पड़ता है, भगवत धाम जाने के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, नरक जाने के लिए चोरी करनी, लूटना, लोगों को मारना, पशु हत्या करनी, पाप करना, दुराचार करना, नशा करना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है नरक में जाने के लिए, कितनी मेहनत मुफ्त में करनी पड़ती है नरक जाने के लिए। भगवत धाम जाने के लिए हरे कृष्णा जपो और चले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। तो आसान काम तो कोई करने को तैयार नहीं है, और मुश्किल काम के सब पीछे लगे हुए हैं। बात क्या कर रहे थे, अकेले की बात आ रही थी, हाँ, उदाहरण बनना चाहिए। 500 साल पुरानी बात है, ब्रज में गदाधर भट्ट नाम के एक महात्मा थे, उनका मंदिर अभी भी है, बड़े अच्छे सत्संग कथा करते थे। एक रजवाड़े के राजा कोई वहां आए तो राजा कथा में जाते थे, तो राजा की रानी संकीर्ण दृष्टि की इतनी थी कि राजा ये कथा में चले गए तो साधु बन गए तो मेरा क्या होगा, तो अकेले जाते थे। तो रानी ने क्या किया, मन में ऐसा विचार आया, एक वैश्यावृत्ति की स्त्री जो गर्भवती थी उसको कहा, ये तुम पैसे ले लो मुझसे, 20-25-50 रुपये जो भी, 500 साल पुराने जब कथा करते हो ना महाराज, तब सबके सामने जाके कहना, महाराज आपकी कृपा से मैं गर्भवती हुई थी, अब प्रसव का समय आ रहा है, इसकी व्यवस्था करो। तो जो कथा सुनते होंगे कहेंगे महाराज इतना दुष्ट है, तो निश्चित रूप से मेरे पति को वहां जाने का मन नहीं करेगा, वापस घर में आ जाएगा।
और वो जाके वहां सभा के अंदर सबके कहती है, महाराज देखो आपकी कृपा से मैं तो गर्भवती हो गई थी, अब मेरे प्रसव का समय, इसकी व्यवस्था करो। महाराज ने कहा बहुत अच्छा, भगवान व्यवस्था करेंगे, निश्चित रहो। अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, मैं आपकी चिंता कर रहा था, आप आ ही गई तो अच्छा है, भगवान करेगा निश्चित। अब तो पक्के भक्त थे, वो तो देख रहे थे कि कोई, मैं तो महाराज ऐसे नहीं है सामान्य भक्त का, ये तो भाई ये तो ढोल में फूल है, ये तो महाराज कथा कर रहा है लेकिन इसका हाल तो ऐसा है। लेकिन महाराज के तो विकार नहीं आया था, वो जो राजा बैठा था वो तो क्षत्रिय था ना, वो उसको एक तरफ नट्टी को ले जाके तलवार निकाली, बोला अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तू सच बोल के, तू वो ये सच है कि झूठ है? बोला महाराज मेरे को मारो नहीं, ये देखो ये पैसे तुम्हारी रानी ने दिए है और मुझे कहा है यहाँ के जाके यहाँ करना। अब बोला यही तुम जाके समाज के बीच में बोलो। अब उनको ले आए और सबके सामने कहा कि महाराज से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरे को तो राजा की रानी ने ये पैसे दिए थे इसलिए मैंने ऐसे कहा। अब तो सब जो कच्चे पक्के थे उन्होंने कहा महाराज ऐसे हो नहीं सकते, ये तो असंभव है, राजा ने तलवार उठाई कि अभी तो रानी को जाके टुकड़े टुकड़े कर लूंगा। महाराज ने बोला इधर आओ महाराज, इतने दिन कथा सुना, तेरा क्रोध तो गया नहीं अभी तक, तू अब रानी को मारने जा रहा है, रानी ने ये किया इसका कारण तुम हो, ये रानी के अंदर जो दोष आया तुम्हारी प्रति इसके कारण तुम हो, तुम अकेले सत्संग में आए उसको साथ क्यों नहीं लाए, उसको लाते तो उसका भाव बदल जाता ना। और इसके ऊपर कहा जाए जितने भी लोग इस वक्त नक्सलाइट बने या आतंकवादी बने उसके पीछे बहुत ज्यादा स्वार्थी लोग कारण है, जो सब चीजों को अपना बना के बैठे हैं, तो आखिर लोग तो दुखी होके भाई मरता क्या नहीं करता, तो ये ईर्ष्या और संकीर्णता संसार में बहुत दुख का कारण है। और सत्संग में परिवार के साथ आना आपका घर में सब समस्याओं का समाधान है, एक आएगा तो समस्या बढ़ती रहेंगी क्योंकि दूसरे, और वैसे तो एक घंटा सत्संग में आते हैं बाकी तो सारा दिन संसार में रहना पड़ता है ना, इसलिए उदाहरण बन के जब तक रहना नहीं सीखे, उदाहरण कैसे बन के रहे, भक्ति का मुख्य उद्देश्य ऐसा नहीं भाई कपड़े केवल धोती पहनने से ही भक्ति हो जाएगी, ये तो बाहर की बात इतनी मुख्य नहीं है, मुख्य इतना है कि हमारा व्यवहार कैसे है। हमारे भक्त जब प्रचार करने जाते हैं घरों में लोग बुलाते हैं तो हम उनको विशेष कहते हैं कि तुम वहां क्या बोलोगे ये लोगों को भूल जाएगा, कैसे उठोगे बैठोगे रहेगे वही उनको याद रहेगा, इसलिए तुम्हारा वहां आचरण जो है वो बहुत उदाहरण होना चाहिए, प्रवचन इतना महत्वपूर्ण हो या ना हो वो तो भूल ही जाएगा लोगों को, लेकिन आप उठे कैसे बैठे कैसे खाया कैसे बोले कैसे व्यवहार कैसे, ये वो लोगों के चित्त के ऊपर रहेगा। तो हम कैसा उदाहरण संसार के लिए जो है उपस्थित करते हैं ये भक्त की महत्व होता है। तो भक्त को बात हम वो कर रहे थे कि कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन कृष्ण प्रेम केवल चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं और कहीं से कृष्ण प्रेम मिलना संभव नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही कृष्ण प्रेम देने के लिए है। चिराद अदितम निजगुप्त वित्तम स्वप्रेम नामा अमृतम अति उदार गौरावित तार। तो जो कई समय से कृष्ण प्रेम नहीं दिया गया था उसको देने के लिए चेतना महाप्रभु आए, ये प्रेम भगवान का नित्य गुप्त निज गुप्त वित्त है, अपना रहस्यमय धन है, गोलोक का धन है, ये क्या है वो नाम अमृतम, ये भगवान का नाम है, ये अति उदार गौरा, ये बड़े उदार है गौरंगा महाप्रभु, तामर पावन नहीं देखते हैं, पापी तापी नहीं देखते हैं, सबको दे रहे हैं, जो निकट आया उसको दे दिया। तो कृष्ण प्रेम केवल चैतन्य महाप्रभु से ही प्राप्त हो सकता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम उसको देते हैं जो नित्यानंद प्रभु का, जिसके लिए नित्यानंद सिफारिश करते, उसके बगैर नहीं देते। नित्यानंद किसकी सिफारिश करते हैं? जो जगाई मधाई जैसे दुष्टों को भगवान के नाम का उपदेश देते हैं, जाके नाम का प्रचार करते हैं, ऐसा जो प्रचार के लिए भाव मन में आ जाए, उदाहरण ऐसा हो, तभी भगवान कृष्ण की प्राप्ति प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो हम कितने लोगों का उदाहरण हमारे जीवन में अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, अरे महाराज क्या करते हो, सारा दिन धोती पहना राम राम जपते हो, लेकिन तुम्हारे काम तो सबके सामने पड़े हैं। काम तुम्हारे ठीक भी तो होने चाहिए ना, बाकी व्यवहार भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो ये बहुत बड़ी क्रूरता लोगों के अंदर, कितनी क्रूरता आ गई है संकीर्तना के कारण, मारना धारना ऐसा ये आतंक चल रहा है, इसका कारण क्या है? पूरी भगवत गीता संतुलन सिखाती है, जीवन में संतुलन होना चाहिए, व्यवहार में संतुलन, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से। अरे घूमना फिरना भी जरूरी है, लेकिन उसमें भी नियंत्रण होना चाहिए। अगर धर्म की पूरी शिक्षा ठीक नहीं होगी ना, तो अर्थ भी आएगा अनर्थ करने वाला, और उससे काम जो होगा बहुत दुष्टता वाला हो जाएगा। अब महाभारत के इस प्रसंग को देखिए, एक तरफ पांडव हैं जो ब्राह्मण की तरह भिखारी होके रहे हैं, लेकिन राज की लालच नहीं है, और दूसरे तरफ दुर्योधन है, लड़के नहीं जुआ करके राज को प्राप्त करना चाह रहा है। प्राप्त करने की उसकी प्रणाली क्या है, जुआ, और जुआ भी उसको खेलना नहीं आता है। वो एक बाहर देश से अफगानिस्तान से शकुनी को लाया है मामे को जुआ खेलने के लिए, उसको जुआ खेल, अब खुद नहीं खेल रहा है। एक मेरे पास तो अच्छा मैसेज आया था, उद्धव भगवान से पूछ रहे हैं कि आपका तो मैं अच्छा बहुत निकट का मित्र हूं, आपके साथ रहता हूं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आपके पांडव इतने बड़े प्रेमी भक्त हैं, आपने उनको उन जुआ में हरा के और 12 साल वनवास का संकट में डाला कैसे? कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम सुनो, दुर्योधन तो नहीं खेला था ना, उसने शकुनी को कहा ना पांसे फेरने के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज ने खुद क्यों खेला, मेरे को भेज देते, बोले कृष्ण मेरी तरफ से खेलेंगे तो क्या शकुनी जीतेगा क्या? तो क्या मेरे से शकुनी जीत सकता था क्या? तो युधिष्ठिर महाराज ने ये, वो तो कह रहा था कृष्ण को पता ही नहीं लगे, मुझसे छुपके ये कार्य करना चाह रहा था, मैं तो दरवाजे पे खड़ा था, लेकिन मुझे बुलाएगा, लेकिन उसे बुलाया नहीं, मैं क्या करूं। बहुत अच्छा भाव है असल में, कि जब वो शकुनू से खिलवाने के लिए तो ये भी कह सकता था मैं नहीं खेलूंगा, मेरी जगह कृष्ण खेलेगा, तो बात ही नहीं बनती ना, तो ये होने वाला ही नहीं था। बोला द्रौपदी ने आखिर जब मुझे बुलाया तभी मैं बाहर खड़ा था, क्या करूं, जब उसने बुलाया तब मैं भागता हुआ गया, तो इसमें मेरा दोष क्या है उधर? लेकिन मैं बात ये करने जा रहा था कि वो जुआ के माध्यम से राज जीतना चाहते थे, तो अब उनको जुआ जीत ली ना, तो धर्म का तो धन कैसा आया, अधर्म का आया ना, जुआ का आया ना, तो उनका धन अधर्म का आया, तो उनका भोग कैसा हो गया, द्रौपदी को नंगन करने का, इसका मतलब भोग विकृत हो गया कि नहीं हो गया, अब उनका काम विकृत हो गया, अधर्म से आया हुआ धन भोग को भी विकृत कर दिया, बड़े ऐसा विकृत किया कि पूरे विश्व के नाश का कारण बन गया। एक द्रौपदी के केशों के अपमान के कारण पूरे भारत वर्ष के क्षत्रिय वंश का विनाश हो गया, एक एक के कारण। कितना बड़ा ये तो भगवान ने संकल्प कर लिया था, अगर जिन्होंने द्रौपदी के अपमान में चुप रहे या सहयोग किया उन सबकी मृत्यु उस दिन निश्चित हो गई थी। वो तो सिर्फ महाभारत का युद्ध तो एक बहाना था, लेकिन काम तो उसी दिन हो चुका था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम भक्त बनने के बाद उदाहरण कैसे बनते हैं समाज में, हमारा ईर्ष्या रहित व्यवहार कैसे होता है, दूसरों के हित की भावना हमारे हृदय में कैसे प्रकट हो, अपने परिवार में घर में कैसे हम प्रेम का वातावरण पैदा करें। इसके लिए आवश्यक है कि सामूहिक ये हरि कथा सब परिवार के साथ सुनने का कैसा योग्य एक एक व्यवस्था बने तो सबसे अच्छी। बच्चों को भी साथ लाना चाहिए, बच्चों का बहुत आवश्यक है, हम उदाहरण हमको बनना चाहिए, तभी सफलता होगी। अघासुर हमारे लिए उदाहरण नहीं, अघासुर भगवान की लीला में भगवान के उदारता और महानता का उदाहरण है। हमारे को तो, हमारे लिए लक्ष्य तो पांडव आदि ऐसे भक्त होना चाहिए जो हर दुख संकट में सबके हित की सोच रहे हैं और अपने स्वार्थ से ऊपर उठ रहे हैं। निस्वार्थी बनना, अति उदार बनना, संकीर्णता से मुक्त होके संकीर्तन करना, तभी जाके हम दूसरों के लिए उदाहरण बन के, बहुत बड़ी बात है, हमको उदाहरण बनना पड़ेगा, तभी भक्ति का ये प्रचार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जब लोग देख के कहेंगे कि ये अच्छे हैं, इनका व्यवहार अच्छा है, इनका आचार अच्छा है, तो भक्ति के अंदर से हमारे अंदर सद्गुण आने चाहिए। और ये सद्गुण भक्ति में आते हैं, सद्गुण कमा सुदुर्लभा, ये तो साधन भक्ति के स्तर पे भी सद्गुण आना लग जाते हैं। साधन भक्ति में जहाँ शुभदा है, उस शुभदा में तीसरा नंबर चार में से सद्गुण आने लगते हैं, देवताओं जैसे गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। ये बहुत बहुत प्रभावशाली भाव है कि भगवान की उदारता तो सबके लिए है, लेकिन हम भगवान के भक्त हैं तो हमारे अंदर भी तो उदारता हो ना। जब वो अघासुर को सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति दे सकता है, तो ऐसे कोई द्वेषी पापी कहीं है हमसे, हमको गाली भी दे रहा है, फिर भी हमको उनको प्रसाद देना चाहिए, उसका भला करना चाहिए, तभी हम भगवान की इस उदारता के विषय को समझ पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद गौर प्रेमानंदे हरि।